भगवद गीता का पहला श्लोक, पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सव माम कहा पांडवा स्वयं किम अकुर्वत संजय। सबको पता है ये श्लोक, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। ठीक हो गया, धन्यवाद। तो पीछे बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो गीता की शुरुआत इस शब्द से हो गया धर्म, और अंत हो रहा है गीता का, जो आखिरी शब्द है वो है 18वें अध्याय का 76th verse। 76 मतलब क्या होता है पता नहीं मुझे हिंदी में, बट उसमें कृष्ण कह रहे हैं यत्र योगेश्वरो कृष्ण 78 यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुधरा तत्र ऋषि विजयोर भूतिर नीतिर ममा। आखिरी शब्द है ममा, ममा मतलब होता है मैं या मेरा। पहला शब्द है धर्म, आखिरी शब्द है मेरा। गीता किसके विषय में बताई जा रही है? गीता कृष्ण के द्वारा जो धर्म इस संसार में स्थापित किया गया है उसके विषय में चर्चा कर रही है। धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब कोई शब्द नहीं है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी, ये नाम है। जैसे आप गाड़ी खरीदने जाओ तो आप कहोगे मुझे टोयोटा चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, मारुति कार चाहिए, मगर ये नाम है। गाड़ी क्या होती है हमें इससे पता नहीं लगता। गाड़ी मतलब जिसके चार पहिए हैं, इंजन है और बैठने की जगह है। तो ऐसे अगर आप बोलेंगे हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, वो नाम है, उससे यदि पता लगता धर्म क्या है। धर्म की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है, और धर्म क्या है? भगवत तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। धर्म वो है, वो कार्य है, वो कर्तव्य है जो भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं, हमारे लिए मतलब इंसानों के लिए। ये मनुष्य की परिभाषा है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। तो समानम एतत् पशुभि नराणाम, महाभारत में आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभि नराणाम। पशु भी खा रहे हैं हम भी खा रहे हैं, पशु भी सो रहे हैं हम भी सो रहे हैं। पशु जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं सड़क पे, जब उसकी गली में कोई दूसरा कुत्ता आता है, देखा है आप लोगों ने, उसको लगता है मेरी गली है। उसी प्रकार हम लोग भी अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा बचाने के लिए पैसे कमाते हैं, गाड़ी रखते हैं, हमें भी भय पूजा लाभ प्रतिष्ठा खोने का, जैसे वैसे जानवरों को है अपनी गली खोने का। अब वो पशु भी मैथुन करते हैं हम भी करते हैं, बस क्या फर्क है? समानम एतत् पशुभि नराणाम, पशु और जानवरों में समानता है। भगवान गीता में भी, कृष्णा गीता में भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन 13वें अध्याय में, कि अर्जुन ये समझने का प्रयास करो कि जानवर और हमारे में एक ही फर्क है, और वो फर्क क्या है? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, वो फर्क क्या है? धर्म। व्यक्ति, इंसान, मनुष्य धर्म को समझ सकता है, मगर पशु कभी भी धर्म को नहीं समझ सकते। कभी भी कुत्ते के मन में प्रश्न नहीं आ सकता कि भगवान कौन है, कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता, वो कभी नहीं सोच सकता, मगर हम लोग सोच सकते हैं कि वो कुछ जीवन में कुछ और है इसके सिवाय। भ्रम जिज्ञासा करनी है, कुछ सत्य है, सत्य को जानना जरूरी है। इसीलिए भगवान ने गीता का शब्द ये धर्म से शुरू किया है। भगवत तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान वेदों में इंसानों के लिए कर्तव्य बता रहे। हमारा कुछ कर्तव्य है, भगवान हमसे कुछ चाहते हैं। भगवान ने हम लोगों के लिए, कृष्ण भगवान ने गीता में 14वें अध्याय 15वें अध्याय में हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम अकारत न सिद्धि अपनोति न सुखम न परांगते। तो शास्त्र को छोड़कर अपने मन से अपना जीवन यापन करता है वो इस संसार में सुखी नहीं रहता। सॉरी, इसलिए कृष्ण कह रहे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। इसलिए हे अर्जुन, 16वें अध्याय का 25वां श्लोक, हे अर्जुन शास्त्र के अनुसार अपना कार्य और अकार्य क्या करना है क्या नहीं करना है इसको निर्धारित करो। ये कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। तो हमें शास्त्र साधुओं से सुनना चाहिए, स्पेशली भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता कृष्ण के द्वारा बोली गई है, स्वयं भगवान के द्वारा, स्वयं मुख पद्मनाभस्य, स्वयं भगवान ने कुछ बोल दिया तो और किसी शास्त्र की जरूरत ही क्या है। तो हम सबका कर्तव्य है धर्म समझना, और परम धर्म है भगवान की भक्ति। भक्ति सारे इस संसार के सारे धर्म भगवान की भक्ति को समझने के लिए बनाए गए। लौकिकी वैदिकी चापी या क्रिया क्रियते मुने, कई धर्म होते हैं नहीं, हमारे सामाजिक धर्म है, शारीरिक धर्म है, सामाजिक कर्तव्य है, शरीर के कुछ कर्तव्य है नहीं, बॉडीली ड्यूटीज है, हमारे रिलेटिव्स के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कर्तव्य है, फ्रेंड्स के प्रति, स्कूल में कुछ ड्यूटीज है, सब कुछ करनी पड़ती है, सारे कर्तव्य करने पड़ते हैं, मगर एक कर्तव्य बहुत जरूरी है, वो है भगवान की भक्ति। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें करते रहेंगे, तो सब एक बहुत बड़ा जीरो है, सब वेस्ट है। आप कहोगे क्यों खराब है, हमने इतनी पढ़ाई की, इतने पैसे कमाए, हम अपना जीवन में खुश है, ठीक है, भक्ति नहीं करे तो क्या हुआ? एक्चुअली बहुत कुछ हो गया। भक्ति नहीं करेंगे तो फिर से मृत्यु होगी और सब कुछ यहीं पे छूट जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम, हम जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, भगवान की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो जन्म मृत्यु रुकेगा नहीं, वो फिर भी चलता रहेगा, वो आपकी प्रॉब्लम है, भगवान की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं ये देखने का प्रयास करो कि इस संसार में जन्म मृत्यु बहुत बड़ी बीमारी है। और इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना ये जीवन का लक्ष्य है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरा आश्रय ग्रहण करो। कृष्ण समझा रहे भक्ति के द्वारा ही हमें जन्म मृत्यु से निकल सकते हैं। फायदा ही क्या अगर आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया संसार में और फिर उसके मर गए, उस चीज का फायदा क्या है? सब कुछ मिल गया हमें, मगर सुख और शांति नहीं मिली, और वो भी छिन जाएगी मृत्यु के समय। अगर आप कुछ नहीं छोड़ना चाहोगे तो प्रकृति के नियम और मृत्यु छीन लेगी आपसे। हम क्यों नहीं समझ पा रहे इतनी साधारण चीज? युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा था यक्ष ने, कि युधिष्ठिर महाराज से पूछा, यक्ष ने पूछा कि युधिष्ठिर इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, देखिए सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है कि सबको पता है कि मृत्यु अटल है, मगर सब ये सोचते हैं कि सब मरेंगे मगर मैं कभी नहीं मरूंगा। ये सबसे आश्चर्य की चीज है। सब ये सोचते हैं मेरा पड़ोसी मरेगा मगर मैं नहीं मरने वाला, और मृत्यु को भूलकर वो इस तरह जीवन यापन करते हैं इस तरह अपने जीवन में अपने प्लान बनाते हैं कि जैसे कभी नहीं मरेंगे, इस तरह जीते हैं लोग। ये बहुत आश्चर्य है युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण उद्धव कह रहे हैं, उद्धव दो चीजें हमेशा याद रखना, एक भगवान को, एक मुझे, कृष्ण कह रहे हैं मुझे, और एक मृत्यु को। क्योंकि अगर मृत्यु को भूल जाओगे तो मेरे पास कभी नहीं आओगे, और अगर मुझे भूल गए तो मृत्यु अपने पास अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। इसलिए दोनों को याद रखना, मृत्यु को और मुझे, तब भक्ति में अग्रसर हो सकते हो, वरना भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारा भक्ति मन नहीं लगता, हम जप करते हैं, हम नहीं कर पा रहे भक्ति। वो इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहे क्योंकि वो भूल गए कि उनके पीछे मृत्यु पड़ी हुई है, इसलिए मन नहीं कर रहा भगवान के पास जाने का। अगर आगे पीछे शेर पड़ा हो तो क्या करोगे, भागोगे नहीं। तो ऐसे पीछे मृत्यु पड़ी, आप भागोगे अगर जिसको पता है वो पीछे कोई है, और किसके पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे और किसके पास जाएंगे। इसे कहते हैं धर्म, सवाय पुंसाम परो धर्मा, ये परम धर्म है। परम धर्म है भक्ति, भगवान की भक्ति के लिए हमें संसार के सारे धर्म त्याग सकते हैं, वो भी भगवान का आदेश है गीता में। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज। कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अपना निष्कर्ष बता रहे हैं कि अर्जुन इस संसार में कई तरीके के धर्म है, मगर मेरी भक्ति के लिए अगर धर्म को त्यागना पड़े संसार के तो त्याग दो, क्योंकि मेरी भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है। बिना एक के शून्य की कोई मूल्यता नहीं है, मगर शून्य के पहले एक लगा दो तो वो 10 बन जाएगा, और उसके बाद एक और शून्य लगा दो तो 100, फिर एक और शून्य तो 1000, मगर एक हटा दोगे तो एक शून्य भी शून्य, दो शून्य भी शून्य, और 3 शून्य भी शून्य ही है, सब 0 है। और बल्कि अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इस संसार में कुछ भी करने से, पैसे कमाने से, संसार की चीजों से दुखी आता है, सुख नहीं आता। कृष्णा कह रहे हैं गीता में कि यही समस्मृता सुखा दुख योनिया एवते। बहुत ही समझदारी वाली बात है, भगवान बहुत इंटेलिजेंट है। भगवान कह रहे ध्यान से देखो इस संसार को तो तुम्हें संसार का स्वरूप समझ आएगा। यही समस्मृता सुखा, इस संसार में जो भी तुम्हें सुख नजर आ रहा है वो दुख की योनि है, वहां से दुख प्रकट होता है। नहीं तो अगर आप बहुत मखमली बिस्तर पे सो रहे हैं तो सुख तो आएगा, मगर थोड़े टाइम बाद आपको गले में दर्द हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगी, पीठ में दर्द हो जाएगा, फिर डॉक्टर कहेंगे ठीक है अब तुम जमीन पे सोना शुरू करो। उस दोस्त गद्दे में सुख था मगर उसमें दुख भी छुपा हुआ था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मीठा बहुत खाएंगे सुख है, मगर बाद में क्या है उसमें दुख भी छुपा हुआ है, क्या है, डायबिटीज, शक्कर रोग वो हो जाएगा आपको। सो हम मूर्खों की तरह सोचते हैं कि यहां पे सुख है, मगर उस सुख के अंदर दुख नहीं देख पाते हो क्योंकि हमारे आंखों में ज्ञान नहीं है। जैसे मैं पहले डॉक्टर था तो मैं बता रहा था उस दिन भी, अगर जब मैं पहले प्रैक्टिस करता था तो हमारे पास पेशेंट आते थे तो हम देखते ही बता देते हैं पेशेंट को क्या बीमारी है, हमें उसे पूछने की जरूरत नहीं है। वो पूछते तो बस एक थोड़ा उसका मन बहलाने के लिए पूछते हैं, अगर उसे कुछ नहीं पूछेंगे तो वो कहेगा कि क्या डॉक्टर बेकार है, तो पूछा भी नहीं, कुछ आला भी नहीं लगाया, वो जर लगाने की जरूरत नहीं होती, वो दिखाने के लिए लगाते हैं बस, ज्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतनी प्रैक्टिस, इतना अभ्यास हो जाता है कि हम देखते ही बता देंगे कि उसके शरीर में क्या चल रहा है। मगर आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि मेरे शरीर में क्या चल रहा है, क्यों, मैं भी देख रहा हूं आपको, आपके पड़ोसी भी देख रहे हैं, मगर उसको आपके शरीर में क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मगर मुझे आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है सब कुछ समझ आ रहा है। कैसे, कोई एक्सरे नहीं लिया, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया, देखते ही बता दूंगा मैं, क्योंकि मेरी आंखों में क्या है जो उसकी आंखों में नहीं है, वो देखते हुए भी नहीं देख पा रहा, अब मैं बिना देखे भी सब कुछ देख रहा हूं, क्योंकि उसके ज्ञान में, उसकी आंखों में अज्ञान है, मेरी आंखों में ज्ञान है। मैंने डॉक्टरी प्रैक्टिस की है, डॉक्टरी का ज्ञान है नहीं, तभी तो मैं समझ पा रहा हूं उसके अंदर क्या चल रहा है। उसी प्रकार जो मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी होती, वो इस संसार को देखते हैं मगर संसार के पीछे क्या चल रहा है वो नहीं समझ पाते, बस ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं। मगर इस संसार के पीछे कौन है, कौन है इस संसार के पीछे? कृष्णा। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, अर्जुन मैं हर जगह विद्यमान हूं, मेरी शक्ति से सब कुछ चल रहा है, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मेरे समान कुछ नहीं है। मैं उस तरह इस संसार में विद्यमान हूं जिस तरह एक मोतियों के पीछे धागा होता है, नहीं मोती धागे में पिरोए जाते हैं, धागा दिखाई नहीं देता, मोती दिखाई देता है। तो बच्चे को लगेगा बस मोती है, मगर पंडित को पता लगेगा कि एक्चुअली मोती धागे पे पिरोए गए। एक बच्चा जब एरोप्लेन देखता है तो वो कहता है हाँ एरोप्लेन उड़ रहा है, मगर उसको नहीं पता कि एरोप्लेन कोई उड़ा रहा है, अंदर पायलट ही बैठा है, नहीं। तो उसी प्रकार जब बेवकूफ लोग संसार देखते हैं तो उनको लगता है अपने आप चल रहा है, जैसे बच्चे को लग रहा है प्लेन उड़ रहा है, मगर बुद्धिमान को पता है कि संसार को चलाने वाला भी है, ऐसे पायलट प्लेन को चला रहा है, और वो कौन है? वो कृष्ण है। वो कैसे पता लगेगा? भगवान खुद कह रहे हैं गीता में कि मैं इस संसार को चला रहा हूं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते। इतनी आसान बात क्यों नहीं समझ आ रही हमें? इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है, इन चीजों को समझने के लिए कोई ध्यान नहीं लगाना पड़ता, ये बहुत आसान बात है। भगवान कृष्णा है और वो सारा संसार चला रहे हैं, और उनकी बात मानना वही धर्म होता है, उनकी शरण लेना, उनकी नाम लेना, उनका गीता लेना, वो भक्ति है बस। सो ये क्लियर है, इसलिए कृष्णा यहां पे गीता में समझा रहे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। भगवान ने गीता धर्म शब्द से शुरू की है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये प्रश्न आता है कि जो धर्म शब्द है, भगवान ने धर्म की चर्चा की है गीता में, मगर भगवान ने धर्म की चर्चा करते हुए केवल गीता में ये नहीं बताया कि धर्म मतलब पूजा करना, धर्म मतलब नमस्कार करना, ये सब है। भगवान ने 18वें अध्याय में बताया कि धर्म मतलब भक्ति, भक्ति मतलब मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भक्ति मतलब क्या है कोई पूछेगा? ठीक है, अब भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, भगवान सबको चला रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है भगवान को समझना। जिस तरह राजा राज्य का पालन करता है तो हमारा कर्तव्य है कि राजा की बात मानना। उसी प्रकार अगर भगवान सारा संसार चला रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि भगवान को समझना, और समझना कि वो क्या चाहते हैं हमसे, उसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति का मतलब क्या है, अब हम कैसे परिभाषा देंगे? भगवान गीता में खुद बता रहे हैं, देखो मुझे नमस्कार, भक्ति की शुरुआत है मुझे नमस्कार करने से, कुछ नहीं कर सकते तो मुझे नमस्कार करो एटलीस्ट। भगवान को नमस्कार करने का मतलब है कि भगवान के भक्तों को नमस्कार करना, नहीं? क्योंकि भगवान कहां रहते हैं? नाहम तिष्ठामि वैकुंठो, मैं वैकुंठ में नहीं रहता अर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं अग्नि पुराण में, योगिनाम हृदय शुवा, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। यद गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां रहता हूं, कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन से। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं देखो मेरे साधुओं को नमस्कार करो, सबसे पहले ये करो मेरे भक्तों को, मुझे नमस्कार करने का मतलब है मेरे भक्तों को नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में सदैव रहता हूं। किस रूप में रहते हैं अपने भक्तों के हृदय में? अपनी गीता की वाणी के रूप में, क्योंकि भगवान के भक्त गीता के उपदेशों को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवद गीता के उपदेशों को अपने हृदय में रखते हैं। इस बच्चे को चुप नहीं करा सकते आप लोग, उसको जस्ट टेक हिम आउट, वो खुद भी नहीं सुनेगा, किसी को भी नहीं सुनने देगा, प्रॉब्लम है। पीछे खड़े होकर सुन सकते हैं। ओके सो मैं क्या कह रहा था, हरे कृष्ण, मैं कह रहा था किसी को याद है, हरे कृष्ण, या क्योंकि भगवान भगवान भक्त के हृदय में अपने उपदेशों के रूप में रहते हैं। हाँ ये मैं क्या कर रहा था, क्योंकि भक्त भगवान के उपदेश अपने हृदय में अपने मन में अपनी आत्मा में सदैव रखता है। भगवान के आदेशों से ना एक इंच उधर होता है ना एक इंच इधर होता है। सो उस रूप में भगवान अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। इसलिए अगर भक्तों को प्रणाम करोगे तो भक्त आपको क्या क्या बताएंगे, भक्त खुश होंगे आपसे तो वो क्या बताएंगे, भगवद्गीता के उपदेश बताएंगे और क्या बताएंगे। अगर हम अगर जो भक्त नहीं है उनके साथ रहोगे तो क्या बताएंगे आपको, वो बताएंगे जो उनको आता है। उनको क्या आता है, उनको यह आता है कि भक्ति करने के भक्ति ना करने के 100 तरीके ये बताएंगे आपको, क्योंकि उनको उसमें अच्छा लगता है भक्ति नहीं करने में। इसलिए संघ का बहुत महत्व है। साधु संघ, साधु संघ सर्व शास्त्र पाए, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होए। अगर आपको यहां पे बैठ के कुछ भी समझ नहीं आ रहा तब भी फायदा है, बैठे रहो, सोना है तो यहां सो जाओ, कोई मना नहीं है, खाना है खाना भी अभी मिलेगा अभी, इसलिए हमने प्रसाद भी रखा है, मगर यहां इस पंडाल से वापस मत जाओ, क्योंकि जैसे यहां से जाओगे भगवान को भूल जाओगे, अपने काम शुरू हो जाएंगे आपके, जैसे ही साधुओं से दूर होंगे संसार आपको पकड़ लेगा। वो इसलिए पकड़ेगा क्योंकि अभी आपको अभ्यास नहीं है। अगर अभ्यास है तो जा सकते हो, तो जा सकते हो संसार में, अभ्यास है तो जाओगे वहां और वहां जाके दूसरे को भी भक्त बना दोगे अपनी शक्ति से, मगर अभी अभ्यास नहीं है, जाओगे तो भूल जाओगे सब कुछ। इसलिए जितना हो सके कथा सुनो, भक्तों के यहां रहो, भक्तों की लंगोटी पकड़ लो, जाने नहीं देंगे हम आपको, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उनके साथ रहो, उनको बोलो कि अगर आप अगर मैं अगर आप मुझे भगवान के पास नहीं ले जाने दोगे तो मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा, आपके पैर पकड़ लूंगा, ये निश्चय होना चाहिए। तो भक्त कहेगा ठीक है अभी चलो क्या कर सकते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा इसको। जिसका दृढ़ निश्चय साधु संग लेने का वो कभी भगवान को भूल नहीं सकता, वो भगवान को प्राप्त करके ही रहेगा। इसलिए वेदांत सूत्र का जो पहला श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन किस लिए बनाए, भगवान को जानने के लिए। तो उसमें व्याख्या लिख रहे हैं बलदेव विद्याभूषण कि भगवान को जानने का एकमात्र रास्ते है क्या है, वैराग्य, नहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ने से भगवान नहीं मिलते। सड़क पे घूमते रहो सारे कपड़े उतार के, कुछ नहीं होगा, वो तो भिखारी बन जाओगे, कोई भक्त थोड़े ना बनोगे। जैसे घूम घूमते नहीं रहते भीख मांगने आते हैं लोग, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, उसको पैसे भी दे देते हो, ठीक है चलो पैसे दे सकते हो, मगर वो भिखारी है, वो साधु थोड़े ना है। साधु भीख नहीं मांगता, साधु भीख देता है। किसकी भीख देता है, आप लोग भिखारी हो, ज्ञान की भीख नहीं, उसको कुछ भीख नहीं चाहिए, असली साधु कुछ नहीं मांगता। तो साधु का कर्तव्य दान करना, लोग कहते हैं गृहस्थ का कर्तव्य दान करना, नहीं, गृहस्थ के 6 कर्तव्य हैं शास्त्रों में, मैं बता रहा था धर्म मतलब कर्तव्य बता लो ना, गृहस्थ के 6 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य है टीवी देखना, सुना है? आजकल कलयुग में ऐसे ही है, 24 घंटे टीवी चलता रहेगा, सोते वक्त भी टीवी चलता रहेगा, जब तक टीवी नहीं चलेगा तब तक मन को शांति नहीं मिलती, ऐसा है आजकल। तो हम लोगों के घर जाते हैं और टीवी चलता रहता है, तो उनसे पूछो टीवी क्यों चला के रखा है, तो कहते हैं जब टीवी नहीं चलता तो ऐसा लगता है घर खाली हो गया, इसमें कुछ सो वेल गृहस्थों का कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है दान, दान करना। जो कमा रहे हो उसे थोड़े पैसे भगवान की सेवा में लगाओ, चाहे कैसे लगाओ, जो प्रचार कर रहे हैं तो उनको दो, या गीता गीता खरीद लो। मैं कल भी बता रहा था, गीता खरीद लो, आपके पास एक गीता होगी, 10 गीता रख लो खरीद के अपने घर में, और जब भी कोई प्रोग्राम, कोई शादी हो, कोई हैप्पी बर्थडे हो, तो उनको गिफ्ट दो गीता। वो अच्छा है नहीं, उसको पैंट दोगे वो फट जाएगी, साड़ी दोगे वो खराब हो जाएगी। और क्या देते हैं आजकल गिफ्ट, मुझे नहीं पता आजकल क्या देते हैं। आजकल क्या लैपटॉप देते हो आप लोग गिफ्ट में, या मोबाइल फोन, पता नहीं क्या देते हो। मोबाइल फोन दोगे तो वो 24 घंटे टाइम बर्बाद करता रहेगा अपना, पूरी दुनिया में बात करते करते, और भगवान का टाइम ही नहीं मिल रहा। लैपटॉप दोगे तो गंदी गंदी चीजें देखेगा उसमें, और यही करेगा और क्या करेगा वो, क्योंकि मनुष्य का दिमाग खाली दिमाग शैतान का दिमाग है। सो उसके पतन का कारण बन रहे हम। सो बेटर है गीता दो, गीता गिफ्ट करो। तो दान करना गृहस्थों का कर्तव्य, दान करना, अपने पैसे थोड़े बहुत सेवा में लगाओ। इसीलिए मैं कल भी कह रहा था कि लोग गीता खरीदें, है तब भी ले लो, क्योंकि जो गीता पढ़ता है, जो गीता कह रहे हैं बोलता है, जो गीता गिफ्ट करता है, जो गीता सुनता है, सबको एक समान फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं गीता बोल रहा हूं आप सुन रहे हो तो मुझे ज्यादा फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो सुन रहे हो उसको भी उतना ही फल मिलेगा, चाहे समझ आए चाहे नहीं आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी यहां बैठा है उसको फल मिलेगा, उसको भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि आप अपना समय निकाल के यहां पे आए हो। समय तो आपने भगवान के लिए निकाला ना, तो उसका फायदा होगा। अफकोर्स जो समझेगा उसको और फायदा होगा, वो बात अलग है। सो दान करना, वैष्णवों की सेवा करना, ये दूसरा कर्तव्य है गृहस्थों का, सेवा करना, भक्तों को अपने घर बुलाना, उनकी सेवा करना। भक्तों की सबसे बड़ी सेवा क्या है, भक्तों की सबसे बड़ी सेवा है कि जो वो बोल रहे हैं उसका पालन करना, वो सेवा है। सो वो करनी चाहिए, मगर जो साधु हैं वो भी दान करते हैं। वो किसका दान करते हैं, वो ज्ञान दान करते हैं, हम लोग भी दान करते हैं। सो इसीलिए भगवान कह रहे हैं भक्ति की शुरुआत होती है वैष्णवों से, साधु से, 18वें अध्याय में उनको जाके नमस्कार करो, यहां से शुरुआत है। वो कुछ बताएंगे कि कैसे करना है, वो क्या बताएंगे, मनमना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। वो बताएंगे देखो अब भक्ति करना शुरू करो, कैसे करनी है भक्ति, उसका भी एक तरीका होता है। अपने मन से भक्ति करना ठीक है, मगर इतना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर अपने मन से भक्ति करोगे तो मन से भक्ति छोड़ भी दोगे। सो भगवान बता रहे हैं भक्ति कैसे करनी है। भक्ति वो वैष्णव कहेंगे देखो भक्ति कैसे करनी है, दो चीजें करो, मेरी गीता रोज पढ़ो नित्य, एक श्लोक उसकी व्याख्या। मैं कल बता रहा था ये वाली गीता पढ़ो आप लोग, वो गीता प्रेस की और इधर उधर की गीता मत पढ़ो, उससे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, उसमें व्याख्या नहीं है, जैसे मैं समझा रहा हूं उसमें कुछ नहीं है। तो ये पढ़ोगे रोज, शायद एक बार समझ नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीन बार नहीं आएगा, हजार बार नहीं आएगा, हजार एक हजार एक बार तो आ जाएगा, क्या खराबी है। जब मैं स्कॉन में आया था, जब मैं शुरू शुरू नया भक्त बना था, तो जो मेरे गुरु है उन्होंने बोला था देखो गीता पढ़ो, तो मैंने शुरू में पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या चल रहा है। तो कम से कम मैंने 200-300 बार पढ़ी होगी, फिर भी समझ नहीं आया। तो फिर क्या निष्कर्ष निकला, गीता खराब है या मैं खराब हूं, किसकी बुद्धि खराब है। मेरा निष्कर्ष निकला मेरी बुद्धि खराब है, नहीं गीता तो सही है, तो इसलिए एक बार और पढ़ के देखते हैं। सो वो व्यक्ति हारता नहीं है जीवन में, जो हार जाता है वो व्यक्ति हारता है जो जीतना छोड़ देता है, जो प्रयास करना छोड़ देता है वो हार जाएगा। हारना खराब नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य करोगे उसमें त्रुटि होगी, उसमें कई बार आपको हार होगी, मगर बार बार करते रहोगे तो अल्टीमेटली चीजें सफल हो जाती हैं, अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। तो गीता पढ़ी मैंने, फिर उसके बाद एक बार दोबारा पढ़ी, धीरे 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 भगवान की कृपा से समझ आने लगा। क्यों? क्योंकि गीता में भी अचिंत्य शक्ति है। गीता के श्लोक या गीता की व्याख्या आप पढ़ोगे तो पढ़ते 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 आपका मन अपना शुरू हो जाएगा, भगवान की कृपा से अपने समझ आने लगेगी चीजें। मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता था, उनको पढ़ना भी आ गया, अनपढ़ थे, गीता पढ़ते पढ़ते प्रयास करते करते भगवान की कृपा से उनको पढ़ना भी आ गया। ये गीता की शक्ति है। सो भगवान कह रहे हैं गीता पढ़ो रोज और मेरा नाम लो, सिंपल, मेरी सेवा करो। सेवा जीव से शुरू होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उष्ट स्पंदन मात्र न, सबके होंठ है नहीं है? आपने कोई आदमी देखा जिसके होंठ नहीं होते? आंख ऐसा होता है, आंख नहीं होती, पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, मगर ऐसा कभी मैंने आदमी नहीं देखा जिसके होंठ नहीं होते, या कोई भी नहीं देखा मैंने। सो भगवान का नाम सब ले सकते हैं, लूले लंगड़े सब ले सकते हैं, जिसके हाथ नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता, नहीं, जिसके पैर नहीं है वो मंदिर नहीं आ सकता, मगर नाम हर कोई ले सकता है क्योंकि होंठ सबके हैं। इसलिए भगवान ने ये परम सेवा रखी है, नाम लेना, ये हर कोई ले सकता है। एक गूंगा ले सकता है भगवान का नाम? क्या कहते हो? मुकम करोति वाचालम पंगुम लगते गिरिम। एक गूंगा भगवान का नाम ले सकता है? वेल, तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, एक गूंगा भी भगवान की कृपा से मुकम करोति वाचालम, एक गूंगा भी भगवान की कृपा से इस तरह बोलने लगेगा जिस तरह महान महान पंडित भी नहीं बोल सकते, समझे? से गूंगा, वैसे तो उसका दुर्भाग्य कि उसकी आवाज नहीं है, मगर होंठ फिर भी वो हिला सकता है, नहीं, और मन में तो बोल ही सकता है वो, उसमें क्या है। सो भगवान का नाम लेना जब इतना आसान है कि उसके अगर होंठ हिलाने से भगवान की प्राप्ति हो रही है तो और क्या चाहिए? और क्यों इधर उधर की किताबें पढ़ रहे हो आप लोग? क्यों इधर उधर की चीजें इधर उधर भाग रहे हो? कभी उस गुरु के पास, कभी इस गुरु के पास, कभी वो धाम, कभी ये धाम। ठीक है, आप जा सकते हो धाम, मगर धाम ही आपके घर आ जाएगा अगर नाम लोगे तो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जा सकते हो, खराबी नहीं है, मगर जाना क्यों है जब हरिद्वार, काशी, प्रयाग, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जमुना, सरस्वती, गंगा सबके घर ही आ जाएगी जहां भगवान का नाम ले रहे हो, तो कहीं जाए क्यों? इसलिए कलयुग का केवल एक ही धर्म है, वो है भगवान का नाम, ये साधु बताएंगे। आपने सुना भी होगा कलयुग केवल नाम धारा सुमरे सुमरे नरोत्पारा, कलयुग में केवल नाम ही सब कुछ है और गीता ही सब कुछ है। एक किताब हो वो गीता, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक किताब हो वो गीता। क्यों? क्योंकि अगर हम गीता नहीं पढ़ेंगे तो इतने सारे वेद पढ़ पढ़ के हम ज्ञान के भार में दबके मर जाएंगे, मगर कुछ समझ नहीं आएगा। वेदों को समझना असंभव है कलयुग में। कई लोग वेदों का प्रचार करते हैं, कई संस्थाएं हैं जो वेदों के बारे में बोलती हैं, मगर गलत निष्कर्ष निकाल के, गलत प्रचार करके लोगों को भ्रमित करते हैं। कोई मुझसे कहता कि वेदों में दिया है, देखो गायत्री मंत्र जप करना चाहिए, दिया है? कई लोग प्रचार करते हैं, देखो वेदों में गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सबसे टॉप मोस्ट है, वो करना चाहिए। है वेदों में गायत्री मंत्र, कोई मना नहीं कर रहा, गायत्री देवी को मां कहते हैं, और बहुत महान मंत्र है, मगर वेदों में और भी चीजें हैं। फिर वेदों का जो अंतिम भाग है उपनिषद, उसमें कई उपनिषद आती हैं, जैसे छांडोग्योपनिषद, उसमें लिखा है कि ओम अस्य महतो निश्वसितस्य, ओम इति एका अक्षरम ब्रह्मा नाम अजानंतो। ऋग्वेद में लिखा है कि ओम भगवान का नाम है और भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति होती है। मगर ओम क्या है? प्रॉब्लम ये है, क्या ओम हम जप कर सकते हैं? उसकी भी विधि वेदों में दी है। गायत्री मंत्र में ओम आता है? आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आजकल कैसेट भी मिलती है, आपको देखा है, गाते रहते हैं लोग, औरतें गाती हैं, सुना है उस कैसेट में? पहली बात तो औरतें गा नहीं सकती वैदिक मंत्र, गाना अलाउड नहीं है ऐसे, वैदिक मंत्र को गा नहीं सकते किसी भी ट्यून में। वैदिक मंत्रों को बोलने का कुछ छंद होता है, अगर आपको पता है नहीं पता है। सो अगर उल्टा फुल्टा करके गाओगे तो उसमें अपराध लगेगा। कई लोग तो अपने घंटी में लगाते हैं, नहीं देखा है, घंटी बजाओगे तो घंटी अंदर बजेगी, आम बुरवत वो पता नहीं क्या, वो सब बेवकूफी है। आप गायत्री मंत्र को इस्तेमाल कर रहे हो घंटी के लिए, घंटी के लिए गायत्री मंत्र इस्तेमाल करना चाहिए भगवान को आनंद देने के लिए। लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं पता, तो जो बनाने वाले लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं इसका। तो कई गुरु आके कहते थे गायत्री मंत्र जप करो, मगर गायत्री मंत्र जप करने के नियम भी होते हैं, वो कृष्णा गीता में बता रहे हैं। ओम को जप करने के नियम है, न अति उच्चम न अति नीचम। भगवान कह रहे हैं अगर किसी मंत्र में जिसमें ओम है उसको जप करना चाहते हो तो क्या करो, तो एक आसन पर बैठो जो ना ऊपर है ना नीचे, पीठ सीधी करो और आंख बंद करके अपने भ्रुवों के मध्य में ध्यान लगाओ, आंख आधी आधी खोल के अपनी नाक की तरफ देखो और यहां पे ध्यान लगाओ, और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो और ऐसी जगह रहो जहां वो क्या शब्द है, अनिकेता सुचिर, अनिकेता जहां कोई नहीं है, खाली जगह पे रहो, जैसे जंगल, समाज में मत रहो। सो कर सकता है कोई? आप लोग कर सकते हो? सोच भी नहीं सकते करने की। अर्जुन ने कहा भगवान ये संभव है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने आठवें अध्याय में अर्जुन को बोला, अर्जुन वेल अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं कि तुम मुझे प्राप्त कैसे कर सकते हो। सो मैं समझा रहा हूं, वेदों में दिया ये सब, मैं कहा वेदों में साथ साथ उसके नियम भी दिए। अब जो और संस्थाएं हैं वो आपको बताएंगे तो गायत्री में जप करो, मगर ये नहीं बताएंगे नियम क्या है, बस करो। तो लोग करते हैं, कोई प्रभाव ही नहीं होता उनके जीवन में, शुद्ध ही नहीं होते, उनका हृदय शुद्ध नहीं होता, वो ही परेशान रहते हैं। मेरे को कई लोग मिल चुके हैं जो कहते हैं कि स्वामी जी हम लोग करते हैं पूजा मगर फिर भी मन परेशान है। ठीक है, तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई अगर आप अपने किचन में जाकर एक कढ़ाई में पानी डालोगे, उसमें आप चावल डालोगे तो हलवा बन जाएगा? नहीं बन जाना चाहिए, नहीं कुछ जादू करो हलवा बन गया पानी चावल से, मगर ऐसे कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हलवा बनाने का तरीका है। उसी प्रकार कोई भी वेदों में बहुत मंत्र है मगर हर मंत्र को जप करने से सिद्धि नहीं मिलती, उसके सबके तरीके होते हैं। तो कृष्णा कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम नहीं कर सकते ये ओम के मंत्र, ये वैदिक मंत्र, क्योंकि इसमें नियम बहुत हैं, तो क्या करो? तो अर्जुन कृष्ण यहां पे कह रहे हैं ओके, आठवें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ओम इति एकम अक्षरम ब्रह्म व्यवहारनम अनुस्मरणम यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम कतिम। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा ओम के परम संयोग का उच्चारण, ओम का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, यदि कोई मृत्यु के समय ओम का चिंतन करता है और शरीर त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को चला जाता है। मगर अर्जुन ने कहा, कृष्णा मैं नहीं कर सकता, वायु रिवर्स दुष्करम, मेरा मन वायु से भी चंचल है नहीं, मन चंचल है नहीं, है ठहरता ही नहीं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, उसके अगले श्लोक में कह रहे हैं, अनन्य चेत सततम भज यो माम स्मरति नित्य तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगे नाम। हे अर्जुन, अगर तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें मुश्किल लगता है, तो क्या करो, तो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करो। जो ऐसा करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, जो गायत्री करता है उसके लिए मैं दुर्लभ हूं, उसको भी प्राप्ति होगी मगर मुश्किल से। क्योंकि मैं क्यों सुलभ हूं, क्योंकि मेरा नाम लेने से उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो इसीलिए शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं, गीता नहीं पढ़ोगे तो पक्का भ्रमित हो जाओगे। गीता में भगवान ने सबका निर्णय दिया है, इसलिए गीता को हम निर्णय शास्त्र बोलते हैं। बाकी सारे शास्त्रों को हम सिद्धांत शास्त्र बोलते हैं। बाकी वेद, उपनिषद, पुराण सिद्धांत बता रहे, सिद्धांत मतलब फिलॉसफी, मगर गीता क्या बता रही है, उन सिद्धांतों का निर्णय बता रही है। जो भी आपको कंफ्यूजन, जो भी भ्रम आपको वेदों में होगा, वेदांत सूत्र में होगा, उपनिषद में होगा, उसका उत्तर कहां मिलेगा, इसे एक किताब में मिलेगा। इसलिए ये गीता बिना पढ़े हम पक्का भ्रमित होंगे, हमें नहीं समझ आएगी चीजें। तो कई लोग हैं जो गायत्री मंत्र जप करते हैं, मगर उनको पता ही, उन्होंने गीता ही नहीं पढ़ी। मैं उनसे पूछता हूं, गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी। वो मुझे वेद दिखाते हैं, ठीक है आप वेद दिखाओ, वेदों में है, मगर भगवान के निर्णय के सामने किसी का निर्णय, किसी के भी निर्णय की कोई मूल्यता नहीं है कृष्ण के निर्णय के सामने। सो कृष्ण कह रहे हैं ठीक है, भक्ति पहला स्टेप है, मेरे भक्तों के पास जाओ। दूसरा है, मेरे भक्तों से सीखो, क्या सीखो, गीता पढ़नी रोज और मेरा नाम लेना, गीता पढ़नी, दूसरों को पढ़ाना, दूसरों को गिफ्ट देना। तीसरा है, वो ये समझाएंगे कि जब गीता पढ़ोगे, जब भगवान का नाम लोगे, तो थोड़े से नियम है। नियम क्या है, गीता पढ़ने का नियम क्या है, नियम एक ही है गीता पढ़ने का, कि पढ़ो, और कोई नियम नहीं, बस यही नियम है। सो मैं कल भी बता रहा था कि गीता को पढ़ लो, गीता सोचो, गीता चलो, गीता बोलो, गीता हंसो और गीता खा जाओ। सोते वक्त भी गीता लेके सो, अपने छाती पे रख के देखो, ऐसी जागो तो गीता का श्लोक पढ़ लो। नहाते वक्त भी गीता को पकड़ के नहाओ, ऐसे नहा के देखते हुए कर सकते हो ऐसे। महात्मा गांधी जो थे, वो शेव करते हुए गीता पढ़ते थे, गीता चिपका रखी थी इसको श्लोक शीशे पे, गीता, महात्मा गांधी को अच्छी लिखती थी गीता, पता है ना, पीछे पता नहीं इसमें नहीं लिखा, मगर महात्मा गांधी पढ़ते थे। महान महान हस्तियां गीता पढ़ती थी इस संसार की, महान महान दार्शनिक लोग गीता पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है गीता में वो है जो किसी शास्त्र में नहीं है, और वो भी है जो सब शास्त्रों में है, गीता ये है। और गीता में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, भक्ति की महिमा बताई है, जो सारे शास्त्रों में है मगर छुपी हुई है। वेदों में भक्ति है मगर अस्पष्ट है, वेदों में छुपी हुई है भक्ति। जिसको जिसको ज्ञान नहीं है वो वेदों से निकाल नहीं पाएगा भक्ति। तो भगवान ने गीता में उसी भक्ति को स्पष्ट करके बता दिया, लो ये भक्ति है, शरणागति है, ये करो। सो भक्ति नियम बताएंगे, ठीक है, और फिर नियमों को पालन करने से क्या होगा, नियमों को पालन करने से मन मना, आपका मन सदैव के लिए भगवान में लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि भगवद गीता में केवल पूजा करना नहीं सिखाया है, केवल आरती करना नहीं सिखाया है, भगवद गीता में केवल भजन करना नहीं सिखाया है, भगवद गीता में प्रेम करना सिखाया है भगवान से। प्रेम जीवन का लक्ष्य है, पूजा करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर पूजा करते रहो, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, तो आपकी पूजा बेकार है। गाड़ी चला रहे हो, पहुंच ही नहीं रहे लक्ष्य तक, तो गाड़ी चलाना बेकार है। करते रहो पूरे जीवन। तो भारतवर्ष में लोग, सब लोग रोज मंदिर जाते हैं, अच्छा है। रोज पूजा करते हैं, अच्छा है। कुछ व्रत करते हैं, अच्छा है। मगर अगर उसका परिणाम ही कुछ नहीं आ रहा, तो बेकार हो गया वो सब। श्रम एव ही केवलम विश्वक्सेन कथासुय ये न उत्पदे रति रतिम श्रम एव केवलम। अगर विश्वक्सेन, भगवान कृष्ण का नाम है विश्वक्सेन, अगर कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो आपने जो भी किया है वो केवल एक श्रम हो गया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत करोगे तो अगले जीवन में वहीं से शुरू कर दोगे। नेहा भी कर्मो नाशो अस्ति, भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति कभी भी अफलित, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। मगर उसके अगले जन्म में वहीं से शुरू करोगे, फिर अगले जन्म में वहीं से शुरू करोगे, फिर अगले जन्म में आपको अवसर मिले करने का ना करे, वो भी कुछ नहीं कह सकते हम। अगर हम सोच रहे हैं कि इस पंडाल प्रोग्राम में हम लोग आ गए अपनी मर्जी से और चले भी जाएंगे अपनी मर्जी से, तो आप बहुत भ्रम में हो। नहीं, यहां पे आप आए हो, इस प्रोग्राम में आए तो खुद हो, मगर अवसर किसने दिया आपको? भगवान ने नहीं, भगवान ने ही ये प्रोग्राम अरेंज किया कि आप लोगों को अवसर मिले उनके बारे में सुनने का, उनकी गीता समझने का, उनका नाम समझने का। हमारा सौभाग्य था, आप लोगों का सौभाग्य था कि आपने अवसर लिया, मगर इतने लोगों का दुर्भाग्य है कि वो अवसर को ले नहीं पा रहे। सो भगवान की कृपा से हमें ये चीजें मिल रही हैं। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि हम ले नहीं। अगर कोई आपको कुछ चीज फ्री में बांट रहा है और आप लोगे नहीं, तो क्या कहेंगे? दुर्भाग्य नहीं कहते उसको, उसको मूर्खता कहते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मूढ़ा नानुपश्यन्ति, लोग मूर्ख हैं। भगवान ने तो यहां तक बता दिया कि मैं भगवान हूं। कृष्णा ने बताया मैं भगवान हूं। गीता में पता है, गीता पढ़ी है ना सबने? सॉरी, पढ़ी। गीता में कृष्णा कह रहे हैं मैं भगवान हूं। भोक्ता रहा मैं तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे संसार का स्वामी हूं। और कृष्णा कह रहे हैं दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि न मे विदु सुरागना प्रभवंती न महर्षय अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। अर्जुन, मुझे देवी देवता भी नहीं जानते। न मे विदु सुरागना, महान महान ऋषि भी नहीं जानते मुझे, वो भी भ्रमित है। वायु, चंद्र, वरुण, ये सब भ्रमित है कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी स्वयं भ्रमित हो गए थे नहीं हो गए थे कृष्ण को देखकर कि छोटा लड़का कैसे भगवान हो सकता है। उसको कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला, इसलिए भगवान की गाय चुरा के ले गए थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि कैसे भगवान हो सकता है, उनकी गाय चुरा ली। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। सो भगवान कह रहे हैं बड़े बड़े देवी देवता मोहित हो जाते हैं, मगर मैं भगवान हूं। किसको पता है समाज में कि कृष्णा भगवान है? केवल बहुत कम लोगों को पता है। लोग कहते हैं सभी भगवान है इस तरह से, मगर ऐसा नहीं है। कृष्ण, राम, श्री रामचंद्र, वराहदेव, मत्स्य, नरसिंह भगवान, ये भगवान है, क्योंकि ये एक ही आदमी है, अलग अलग रूप है। राम, कृष्णा, वराह, रामादि मूर्ति शुकला नियम अतिष्ठन, ये अवतार है। नहीं सुना है ना हमने? विष्णु, राम, कृष्ण, ये सारे अवतार है। मैं भगवान हूं। मगर शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, गणेश जी, सूर्य नारायण, सूर्य देव, ये सब देवी देवता है, ये सब भगवान की भक्ति करते हैं। और इनमें कोई भी शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण की कृपा से है। सो आपको जब कोई कहता है, कुछ लोग कहते हैं देखो भगवान ने गीता में बताया मैं भगवान हूं, तो कुछ लोग कहते हैं देखो भगवान कितने अहंकारी हैं। कि अपने आप को कह रहे हैं मैं भगवान हूं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, नहीं मैं भगवान हूं, मगर एक्चुअली वो लोग बेवकूफ है। जब मूर्ख रामचंद्र को देखता है, जब असुर देखता है रामचंद्र को तीर कमान के साथ, तो उनको डर लगता है, भय होता है, मगर जब भगवान के भक्त देखते हैं रामचंद्र जी को, नहीं उनके धनुष के साथ, तो वो निर्भय हो जाते हैं, नहीं फर्क है। इसीलिए जब मूर्ख सुनते हैं कृष्ण कह रहे हैं मैं भगवान हूं, तो कहते हैं देखो भगवान में अहंकार है, मगर जब भक्त सुनते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं मैं भगवान हूं, तो उनको समझ आता है कि ओ कृष्ण की बहुत कृपा है कि उन्होंने मैं बता दिया वो भगवान है, वरना मैं कभी पता नहीं लगता। अगर आप वेद पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट नहीं होगा कि भगवान कौन है, क्योंकि वेदों में बहुत गूढ़ भाषा चल रही है। आदिदेव एक आध्यात्मिक आदि बौद्धिक भाषा चलती है, तीन अर्थ होते हैं वेदों के। अब ये चीजें हैं संस्कृत की, उससे से निकालना बड़ा मुश्किल है। वेदों में यज्ञ है, वेदों में देवी देवताओं की स्तुति है, ऋग्वेद में वरुण देव, बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने उपनिषदों में ब्रह्म की चर्चा है, उसके उससे समझना मुश्किल है, ऐसा लगेगा भगवान शक्ति है, भगवान निराकार है। तो भगवान ने सोचा भी कलयुग में बड़ा मुश्किल है, मंद सुमंद बातें, इनकी बुद्धि कम है, इसलिए इनको हम गीता बताएंगे। भगवान ने गीता बता दी, और गीता में कृष्ण ने क्या बोला, देखो सिंपल मैं भगवान हूं, ये भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान ने खुद हमें बता दिया मैं भगवान हूं। अगर भगवान हमें नहीं बताते मैं भगवान हूं, तो हमें कभी नहीं पता लगता, हम भ्रमित होके हमेशा के लिए नर्क में चले जाते। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं एकम देवम देव की पुत्र गीतम, एक किताब वो केवल गीता, कुछ मत पढ़ो, ना कुछ पढ़ने का टाइम है, समय नहीं है, मृत्यु आने वाली है। अपने रूम में, अपने घर में आप एक जगह कृष्ण की फोटो लगाओ, एक जगह मृत्यु की, रोज देखना मृत्यु कृष्णा मृत्यु कृष्णा, तो हमेशा सही चलते रहोगे। सो समय नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ने का भी समय नहीं है, अभी हमें कलयुग में सार चाहिए। हम किससे पूछे सार क्या है, कोई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी की बात मत सुनो, खुद पढ़ लो ज्यादा अच्छा है। सो क्या कह रहे हैं कृष्णा, कृष्णा कह रहे हैं मैं भगवान हूं, मेरी कृपा भगवान की कृपा है, भगवान ने अपना नाम दिया वो भगवान की कृपा है, भगवान ने अपने आप को प्राप्त करने का तरीका बताया वो भगवान की कृपा है, भगवान अपने आप को प्राप्त करने की शक्ति दे रहे हैं वो भगवान की कृपा है, और भगवान अपने आप को प्राप्त करा देंगे खुद स्वयं, वो भगवान की कृपा है। हमें बस इतना करना है कि भगवान के भक्तों के पास बैठे रहना है, हमें बस इतना करना है कि अपनी इच्छा रखनी है कि मैं भगवान को इस जीवन में प्राप्त करूंगा, बस ये इच्छा होनी चाहिए, यहां से बस शुरू, बस हमें इतना ही करना है, इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान को समझूंगा, बाकी चीजें भगवान कर देंगे सब अपने आप। अगर हम एक कदम लेंगे तो भगवान 10 कदम लेते हैं। इसीलिए ये गीता शुरू हो रही है धर्म शब्द से। वो समय क्या तो गीता शुरू हो रही है धर्म शब्द से। सो आज मैंने धर्म की व्याख्या की, आपको बताया मैंने, मेरी प्रार्थना यही है आपसे कि ये गीता आप लीजिए पीछे, और गीता के साथ हम 2 बुक फ्री भी दे रहे हैं, जैसे मैंने कल बताया था, ये कोई भी 2 बुक फ्री है, आप वहां से ले सकते हो गीता के साथ, क्योंकि इस महीने भगवान ने गीता बोली थी। और आपने एक एड सुना है, मेलेडी खाओ और खुद जान जाओ, बस और कोई तरीका नहीं है जानने का, खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद भगवान का नाम लो, आपको पता लग जाएगा ये सही है। ज्यादा इधर उधर 1000 लोगों की बात सुनोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बस उसमें थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेहनत भी नहीं करोगे तो क्या हो सकता है। भगवान ने इतना आसान रास्ता बता दिया, अगर अभी भी हम नहीं कर सकते तो भगवान भी अपने बाल पकड़ के रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते जो अपनी मदद नहीं करता। सो हम लोग कल और चर्चा करेंगे गीता पे। मैंने धर्म की चर्चा की, मैं कल बताऊंगा कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि गीता में कैसे विज्ञान है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री गीता में है, और कैसे भगवान गीता में अलग अलग अध्यायों में अलग अलग बातों की चर्चा कर रहे हैं और फिर उसका समन्वय भी कर रहे हैं। कैसे हमें बता, क्या बताना चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं हमसे, गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, वो समय बताऊंगा मैं। हरे कृष्ण। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? या सॉरी,
स्वामी जी विष्णु विष्णु के जो विभिन्न रूप है उसको थोड़ा सा व्याख्या किया जाए।
ठीक है। सो विष्णु 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 कौन है? विष्णु, आप विष्णु भी तीन तरीके के होते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे, कभी सुना है आपने विष्णु तीन तरीके के? आपने सुना होगा विष्णु बस एक ही होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। तो सनत कुमार सुजात संहिता और पंचरात्रों में दिया है, तीन तरीके के नहीं कह सकते, तीन रूप तीन विस्तार में रहते हैं विष्णु। तो एक विस्तार होता है हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, उनको बोलते हैं शिरोदक्षा विष्णु। हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में है भगवान या नहीं है, इसमें कोई संशय है? कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका हृदय कौन धड़का रहा है? खुद धड़का रहे हो आप? अगर खुद धड़का रहे तो रोक लो बैठ के, कोई रोक सकता अपना हृदय ध्यान लगा के? कितना ही ध्यान लगा लो अपना हृदय नहीं रोक पाओगे। लोग कहते हैं ध्यान लगा के हम भगवान बन जाते हैं, तो अपना हृदय रोक लो, नहीं रोक पाओगे। नहीं, आजकल ढोंगी गुरु ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं ध्यान लगाओ। एक ढोंगी गुरु से पूछा था भगवान कौन है, तो उसने उत्तर दिया देखो ये क्या पूछ रहे हो भगवान कौन है, मैं भी भगवान हूं तुम भी भगवान हो। एक आदमी आया था, प्रभुपाद जी अपना प्रोग्राम कर रहे थे, प्रभुपाद जी मतलब इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, अमेरिका में इस्कॉन शुरू हुआ था, तो वहां पे जो लोग है ना उस टाइम, तो 1970 में तो अमेरिकन लोग ड्रग्स पीते थे। आपने सुना है वो दम मारो दम हरे कृष्णा हरे राम पिक्चर आई थी? तो खैर वो तो गलत है, हरे कृष्णा वाले ड्रग्स नहीं पीते थे, वहां के लोग ड्रग पीते थे। तो वहां के लोगों के दिमाग में घुस गया था, यहां से जो लोग इंडिया से भी लोग संत जाते थे अमेरिका, तो उन्होंने उनके दिमाग में घुसा दिया था देखो आत्मा ही परमात्मा है, सब भगवान है, उनके दिमाग में घुस गया है। तो प्रोग्राम चल रहा था इस्कॉन का, तो कृष्ण की पूजा हो रही थी, तो एक फिरंगी आया वो सुट्टा मार के, उसने बुलाया पुजारी को इधर आना, उसको पीछे ले गया, कहता मैं एक बात बताना चाहता हूं। तो उसने कहा देखो मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं क्योंकि मैं भगवान हूं, तुम मेरी बहुत अच्छी तरह पूजा कर रहे हो इस मंदिर में, मैं बहुत खुश हूं, समझे? उसको लग रहा था कि वो कृष्ण बन गया। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी ध्यान लगा के भगवान नहीं बन सकता। तो कहीं गुरु कहते हैं मैं भगवान बन गया हूं, तो उनसे पूछो भैया तुम भगवान हो तो अपना पेशाब रोक सकते हो? वो नहीं रोक सकते, वो जब अपना शरीर की क्रियाएं नहीं रोक सकता वो भगवान काय का है, उसको भगवान कहते हैं। भगवान स्वर नियंता है, स्वतंत्र है, स्वराट है, उनके कंट्रोल में सब कुछ है। जो व्यक्ति अपने पेशाब नहीं रोक सकता वो भगवान क्या होगा? और बेवकूफ लोग उसको भगवान कह रहे हैं, वो भी अपने को भगवान कह रहे हैं, वो पैसे कमाने के धंधे हैं और कुछ नहीं। सो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और जब भी कोई भक्त बाथरूम जाता है पेशाब जाता है, तो उसको उसको क्या स्मरण आता है, किसका स्मरण आता है? उसको भगवान का स्मरण आता है, क्योंकि शरीर में जो भी क्रिया हो रही है सब परमात्मा के नियंत्रण में है। अपने आप कुछ नहीं हो रहा, नहीं तो शिरोदक्ष है विष्णु, तो परमात्मा के रूप को शिरोदक्ष है विष्णु कहते हैं। विष्णु एक रूप में होता है परमात्मा के रूप में, दूसरे रूप में होते हैं विष्णु इस ब्रह्मांड में विद्यमान होते हैं, सूर्य चंद्रमा भगवान की शक्ति से चल रहे हैं, उनको कहते हैं गर्भोदक्ष है विष्णु, इस ब्रह्मांड को कहते हैं गर्भ। जिस तरह स्त्री के योनि को कहते हैं गर्भ, बच्चा होता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड को गर्भ कहते हैं जिसमें सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो वहां पे भी विष्णु है, उनको गर्भोदक्ष है विष्णु कहते हैं। और एक विष्णु होते हैं, ये दोनों विष्णु का विस्तार है, जो मेन विष्णु है वो इस भौतिक जगत के परे विरजा नदी पे लेटे होते हैं आदिशेष पे, उनको कारणोदक्ष है या महाविष्णु कहते हैं, वो सृष्टि करते हैं। वो जब एक सांस लेते हैं अंदर तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है, जब सांस बाहर लेते हैं तो पूरी सृष्टि बन जाती है, करोड़ों ब्रह्मा भगवान के एक सांस में खत्म हो जाते हैं, समझे। भगवान जब एक सांस अंदर लेते हैं करोड़ों 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 साल बीत जाते हैं। अगर आपसे कोई चींटी आके गए, चींटी समझते ना, चींटी, कोई चींटी आके गए आपसे, सपोज बोलने लगे चींटी, वैसे तो बोलती नहीं है मगर उसको बोलने की शक्ति मिल जाए, और आपसे आके बोले देखो मैं बहुत परेशान हूं, मेरी शादी नहीं हो रही और मेरी जॉब नहीं लग रही, क्या करूं, चींटी कह रही, तब हंसोगे या क्या कहोगे उसको, हंसोगे नहीं। चींटी की जिंदगी कितनी होती है, दो दिन होगी, तीन दिन होगी, नहीं बस इतना ही होगा ना। तो आपको क्यों हंसी आ रही है, आपको इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि तीन दिन की जिंदगी है और वो टेंशन में, उसकी शादी नहीं हो रही, उसका जॉब नहीं लग रहा, आप कहोगे बेवकूफ है। तो ऐसे ही भगवान विष्णु की एक सांस में हम करोड़ों बार मर गए, करोड़ों बार जिंदा हो गए, करोड़ों ब्रह्मांड निकल गए। भगवान की दृष्टि में हमारा जीवन चींटी से भी छोटा है, यूं है जैसे चिंगारी होती है ना, आके चली जाती है। तो अगर हम भगवान से आके कहें भगवान हमारी शादी नहीं हो रही, हमें ये नहीं मिल रहा, भगवान हंसेंगे, भगवान कहेंगे क्या कह रहे हैं, जब तक ये बोलेगा तब तक ये खत्म भी हो जाएगा, इसको पता ही नहीं, मूर्ख है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है इसलिए हम ये अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, हमने गीता नहीं पढ़ी इसलिए हम ये अनाप शनाप बातें करते हैं, हमें पता ही नहीं क्या बोलना है भगवान से, क्या नहीं बोलना। और भगवान को हमारी बातें सुन सुन के हंसी आती है। वो बात यह है कि भगवान की फोटो देखिए, भगवान हंस रहे होते हैं, नहीं हंस रहे होते हैं ना, अभी हंस रहे, अभी भी हंस रहे। सो अपने भक्तों को देख के तो भगवान प्रसन्न होते हैं, वो हंस रहे हैं, और जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी होती उनको देख के भी हंस रहे होते हैं उनकी मूर्खता पे, कितने बेवकूफ है, नहीं। तो भगवान की हंसी, भगवान की प्रसन्नता अपने भक्तों को मोक्ष दे देती है, और भगवान की वो ही हंसी जो अज्ञानी है उनको माया में डाल देती है। कृष्ण ऐसे गीता में आता है, भगवान ने जैसे ही अपनी भगवान ने हंसी करी, भगवान हंसे, अर्जुन माया में चले गए और अर्जुन भ्रमित हो गए, तब फिर गीता का ज्ञान बोला गया। सो ये तीन तरह के विष्णु हैं, ये शास्त्रों में, ये गीता में दिया है, भगवान कह रहे हैं उत्तमा पुरुषस्तोन्ने परमात्मेति उदारतः, पंद्रहवें अध्याय में कृष्णा बता रहे हैं परमात्मा कौन है और परमात्मा के ऊपर भगवान कौन है। ये एवं अस्य मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, कृष्णा गीता में इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा उसके अंदर, इसलिए मैं समझाता कि ये गीता पढ़ो, इसमें इसमें व्याख्या है, तो हमने समझा रखा है कि कैसे गीता के श्लोकों में गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। हरे कृष्ण। किसी को और कोई प्रश्न पूछना है, पूछिए आप, एक मिनट, एक एक सेकंड, हाँ उनको। हरे
कृष्ण,
कलयुग कितने साल बाकी है, कलयुग का विनाश होगा, भगवान आ जाएगा, कलयुग कहाँ है, कलयुग यहाँ है, ये अमेरिका में, ये डाल्टनगंज में, ये पूरी सृष्टि में, एक्चुअली कलयुग कहीं नहीं है, कलयुग यहां पर है, हम सबके मन में है कलयुग। अगर इस संसार के सब लोग भगवान की भक्ति करने लगेंगे तो यही युग क्या बन जाएगा? सतयुग। डाल्टनगंज वही रहेगा, अमेरिका भी वही रहेगा, मगर सतयुग बन जाएगा। तो लोगों की मानसिकता से युग बनता है, नहीं जगह से नहीं बनता। हमारे मन में कलयुग है। सो कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग का अंत अभी कर सकते हो भगवान की भक्ति करके, आपके लिए अंत हो जाएगा, बाकी लोगों के लिए चलता रहेगा। समझ गए? तो हम भक्ति करेंगे, हमारे लिए अंत, कलयुग का प्रभाव नहीं है, खत्म, बस हमारे मन में था, खत्म हो गया। बाकी लोग कलयुग में रहेंगे, उनको रहने दो, उनकी मर्जी है। मगर शास्त्रों में कलयुग की विधि भी दे रखी है, अवधि 432,000 साल है कलयुग में। अभी कितने साल बीते हैं? सिर्फ 5,000 साल। अभी फिर भी थोड़ा ठीक मामला है, मगर अभी खराब हो। अभी 10,000 साल तक गीता रहेगी आगे, अब 10,000 साल बाद गीता खत्म हो जाएगी, धरती से लुप्त हो जाएगी, भगवान का नाम लुप्त हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता होगा, फिर लोग जानवर बन जाएंगे, तब फिर असली कलयुग शुरू होगा। इसलिए भविष्य पुराण में लिखा है कि जो 10,000 साल है इसमें भगवान के पास निकल लो, दो निकल लो, वरना हमेशा के लिए फंसे रहोगे। तो ये जीवन मूल्यवान है, इसलिए शास्त्र कह रहे हैं भक्ति करो, चले जाओ। और फिर 432,000 साल बाद फिर कल की अवतार आएंगे। कहाँ आएंगे? बिहार में आएंगे, और गांव का नाम भी दिया है संबल गांव, उनके माता पिता का नाम भी दिया है। और वो क्या करेंगे? उनका बस एक ही काम होगा, वो प्रेम प्रचार नहीं करेंगे। गीता में भगवान ने प्रेम प्रचार किया, मगर उस टाइम भगवान केवल एक ही काम करेंगे सबका, फिर प्रेम की बात नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम सब लोग इतने बीमार हो जाएंगे कि उनको कोई, वो किसी भी दवाई से सही नहीं हो सकते, उनको मारना ही पड़ेगा। सो अब हमें क्या करना है? हमें चिंता नहीं करनी उस चीज की, हमें चिंता करनी है हम अपना कलयुग अभी खत्म कर ले, बस दैट्स इट। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है? कुछ आ गया, वो क्या कह रहे हैं? कलयुग हमारे मन में।
पंडित जी प्रणाम डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि शंकर और शिव आदि देव जो कहते हैं तो कौन बड़े हैं या क्या भी है? महेश, शंकर, शिव आदि देव।
वेल, शंकर, महादेव, शिव, शंभु, रुद्र, ये सारे नाम है, और कृष्णा और विष्णु, कौन बड़ा है? शास्त्र कह रहे हैं शिव, शंभु और रुद्र तीनों अलग अलग होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं शंभु, ये शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यान्, ब्रह्म संहिता में लिखा है शंभु। शंभु से आते हैं शिव, जो कैलाश में रहते हैं, मानसरोवर, इस धरती पे कैलाश है, वहां पे मानसरोवर, वहां पे रहते हैं शंभु। रहते हैं गोलोक और इस ब्रह्मांड के बीच में जगह है सिद्धलोक, वहां शंभु रहते हैं अपने गणों के साथ। और फिर शिव से आते हैं रुद्र, 11 रुद्र आपने सुना होगा, तो वो रुद्र प्रलय करते हैं। मगर वो जो शंभु है उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? उनकी उत्पत्ति होती है विष्णु की दृष्टि से। विष्णु की दृष्टि को कहते हैं शंभु। जब वो दृष्टि इस प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं विष्णु, इस प्रकृति को कहते हैं दुर्गा। तो शंभु और दुर्गा के मिलन से ये सृष्टि शुरू हो जाती है, नहीं शिवा पार्वती। मगर उन वो शंभु क्या है? भगवान विष्णु की दृष्टि है। उस प्रकृति में शक्ति किसने डाली? विष्णु ने डाली। इसलिए आदि देव कौन हुए? आदि देव हुए विष्णु। शिवजी को भी आदि देव इसलिए कहते हैं क्योंकि शिवजी ने, शिवजी इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। मगर विष्णु को आदि देव इसलिए कहते हैं क्योंकि विष्णु केवल इस ब्रह्मांड की नहीं, आध्यात्मिक लोगों की भी सृष्टि करते हैं। समझे फर्क है? जैसे उदाहरण के लिए आपके डाल्टनगंज के कौन है एमएलए, वो कौन मेन आदमी कौन है, चीफ मिनिस्टर, पता नहीं कौन, सुरेंद्र सिंह जी, हाँ ठीक है वो है, तो वो यहाँ के मेन आदमी है, नहीं सबसे टॉप मोस्ट आदमी है, ये कहोगे ना डाल्टनगंज के टॉप मोस्ट आदमी वो है। पूरे इंडिया का टॉप मोस्ट कौन है? डाल्टनगंज का आदिदेव कौन है? सुरेंद्र सिंह जी, अब मैं इस तरह बोलू, भारत का आदिदेव कौन है, आदि देवी कौन है, सोनिया गांधी, आदि देवी अस्त मनमोहन सिंह, सो प्राइम मिनिस्टर नहीं, इस संसार का आदिदेव कौन है, वेल बिल क्लिंटन, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं, वो कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, उसको कह लो सभी आदिदेव है, मतलब मगर अपने अपने अधिकार से। तो शिव जी को भी आदिदेव कहते हैं क्योंकि वो इस, शिव जी पार्वती को भी आदिदेव कहते हैं, आदिशक्ति कहते हैं, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, उसमें मदद करते हैं ब्रह्मा जी के साथ। मगर कृष्णा उनके भी आदिदेव हैं क्योंकि उनकी शक्ति से वो कर पा रहे हैं, इसीलिए शास्त्रों में शिव जी को भी ईश्वर कहा है, कृष्ण को भी ईश्वर कहा है, मगर शिव जी को बोला है ईश्वर, मगर कृष्ण को बोला है परमेश्वर, शिव जी को बोला है सबके कारण है, मगर कृष्ण को बोला है सर्व कारण कारणम, वो कारण के भी कारण है। तो इस तरह से हमें शास्त्र को समझना चाहिए। तो शिव जी, शंभु, रुद्र सब विष्णु और कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमें कैसे पता, हमें ऐसे पता है कि महाभारत में, रुद्र सूक्त में, ऋग्वेद में विष्णु की पूजा है, विष्णु के नाम इस्तेमाल होते हैं वहां पर, गोपाल सहस्त्र नाम शिवजी ने बोला है, विष्णु सहस्त्र नाम शिवजी ने बोला है, रामा रामा रामेति मनो रामे रमो रमे, ये शिवजी ने पार्वती जी को बोला कि मैं सदैव राम का नाम लेता हूं। और क्या रामेश्वरम में राम ने किसकी पूजा की, शिव जी के। बाप कहोगे ऐसे कैसे है, तो ऐसे हो सकता है, अगर पिता अपने पुत्र को माला पहनाए तो इसका मतलब पिता पुत्र नहीं बन जाता, नहीं। तो भगवान भी अपने भक्तों का आदर करते हैं। तो रामेश्वरम का मतलब क्या हुआ, तो पद्म पुराण में आता है, जब रामेश्वरम लिंग प्रकट हुआ तो सारे देवी देवता है, उन्होंने कहा रामेश्वरम की जय, राम के जो ईश्वर है उनकी जय। शिवजी वहां प्रकट हुए, शिवजी ने कहा नहीं, राम के जो ईश्वर है उनकी जय नहीं, राम जिसके ईश्वर है उनकी जय, वो मैं हूं। तो रामेश्वरम का मतलब वो होता है। खैर और भी इसके अंदर रहस्य है बहुत बड़े बड़े कि आदि देव कौन है, मगर ये शास्त्रों का निर्णय है, वेदों का निर्णय है। वेदों में केवल विष्णु है, वेदे च रामायणे च महाभारते पुराणे तथा आदि अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, सब जगह हरि है, आदि अंत्य और मध्य सब जगह, यही गीता का निर्णय है, यही सारे शास्त्रों का निर्णय है। और पद्म पुराण में यहां तक लिखा है, शिव जी कह रहे पार्वती से कि जो शिवलिंग के सामने गीता पढ़ता है उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने गीता पढ़ी है शिवलिंग के सामने बैठ के, और फिर वो वैष्णव बन गए, भक्त बन गए, जो सही से शिव जी की पूजा, जो किसी इच्छा से नहीं कर रहे थे, नहीं, शिव जी विष्णु के पास भेज देते, कई लोगों को मैंने देखा है। सो ये प्रमाण है। आपके प्रश्न का उत्तर ठीक है, नहीं ठीक है क्या, पूछना है कुछ और क्या, कोई कुछ संशय है क्या?
आदि देव के बारे में कन्फ्यूजन रहता है, शिव बहुत शाखाएं नहीं चल रही धर्म के, ईश्वर शिव को सबसे बड़ा देवता माना जाता है, तो अभी क्लियर नहीं हुआ है।
हाँ वो देवता है मगर भगवान नहीं है, बस ये, भगवान तो केवल एक ही होता है, दो भगवान कैसे हो जाएंगे, भगवान मतलब सुप्रीम, वो भगवान के सबसे बड़े भक्त है, वैष्णवनाम यथा शंभु, ये भागवतम में लिखा है, सबसे बड़े भक्त है। सो इस तरह से है। अब आप कहोगे कि शिव पुराण में लिखा है शिव भगवान है, नहीं ऐसा है, शिव पुराण पढ़े किसी ने, तो वो इसलिए लिखा है, मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि वो डाल्टनगंज के भक्त, समझे, वो इस भौतिक ब्रह्मांड के सृष्टि करते हैं। हमारे यहां कोई अतिथि आता उसको भी तो पहले भगवान कहते थे नहीं कहते थे कि हे भगवान आपको प्रणाम है, तो क्या वो भगवान बन गए? ऐसे शिव जी को भी भगवान कहते हैं क्योंकि वो इस ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं। शंभु, शिव नहीं शंभु, शंभु स्पेसिफिकली, मगर उन शंभु को भी नियंत्रण करने वाले कृष्ण, इसलिए वो भगवान है, बाकी सब देवी देवता है। हम सबका आदर करते हैं मगर प्रेम केवल भगवान से होता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं। जीव स्वरूप है कृष्ण एर नित्य दास, कृष्ण गीता में कह रहे मम एव अंश जीव लोके, तुम सब मेरे अंश हो, किसी के अंश नहीं हो, इसलिए मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। बस ओके, कुछ पूछना है किसी को और कुछ?